മംഗളം ഭഗവാൻ ഹിന്ദുവും മംഗളം ഗൗതമവും മംഗളം കുന്ദാരിയോദേന്ദ്രമൂഷ്ടം സർവമംഗള മാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണം ജൈനം ജയസുവിശ്വാസനം നവസമയക്കാരായ സ്വാമിഭൂതി അച്ചപാശത്തെ ശ്രീസ്വരാളായ ബാബായ സർവകാലായ സദസ്സിലും ദർശനം ശേഷാണ് ബാബാശുദ്ധേശനെ പരിചരിക്കണേ ആത്മനെ പ്രശ്നോക്കാമേക്കും ഗതി പാമേ സർവേശിക്കുന്ന മോക്ഷപന്ഥേ ജയാനുഭവത്തെ ഹേമാജനിത്യ അപ്പനി ചർച്ചീനതാ ബാക്ക जीव तत्व कैसा है उसका निरूपण किया है और पुद्गल कैसा है उसका निरूपण आया है उसने गाथा अपन ने सवेरे देख ली थी कि दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है अज्ञान रूप से तो उसमें कुछ वहाँ घात होता है तो पुद्गल का घात होता है ऐसा नहीं है और पुद्गल का घात होता है तो अज्ञान परिणाम हो जाता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि दोनों की स्वतंत्र स्थिति है दोनों की क्रियाएं स्वतंत्र रहती है एक दूसरे को कुछ लेना देना होता ही नहीं है जैसे शरीर की क्रिया कुछ भी चल रही हो द्रव्यमान की क्रिया चल रही हो समझ लो कि शरीर सूख गया हो तो कोई ज्ञान दर्शन चारित्र हो जाता है ऐसा नहीं होता है ऐसा होने पर भी अज्ञान दशा चलती रहती है गुरुदेव ने इसको बहुत स्पष्ट किया है कि शरीर की क्रिया समझ लो कि अटक गई वाणी की क्रिया बंद हो गई विनय देव की जो कुछ की क्रिया है वो बंद हो गई तो उसमें गुण का भाव नहीं हो सकता है और समझ लो गुण जो है वो शरीर क्रिया के शरीर की क्रिया से गुण की क्रिया नहीं चलती है गुण की क्रिया से शरीर की क्रिया नहीं चलती है माने कि दोनों पृथक पृथक काम चल रहा है एक दूसरे को कुछ लेना देना होता ही नहीं पहले भी कह रहे तो धीरे धीरे भी बहुत जरूरी है भाई साहब ने भी बताया जो सवाल है क्या होता है कि सूक्ष्म चर्चा करे और स्कूल में अपनी बूढ़े चलती हो तो वो तो काम नहीं चलता है क्योंकि गुरुदेव जी ने जो आगम का सारभूत अध्यात्म दिखाया है अपने को वो आगम का सारभूत अध्यात्म है आगम का सार निकाला और उसमें से अध्यात्म दिया है अपने को तो इस तरीके से अपनी सोच करनी चाहिए इस तरीके से अपने को विचार दशा चलानी चाहिए और खाली सुन लेने से कोई काम नहीं बनता है सब सुनते हैं अनादि से ये कोई मेरा थोड़ी है तो अनादि से चलता आता है अनंतवाद समोसरण में जाकर वापिस आ गया श्री गुरुदेव जी बोलते हैं कि अनंत बार होगा, जगत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है वहां उसका जन्म नहीं हुआ। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बात कही जाती है उसको यथार्थ रूप से समझ के ले सकता है ही, तो खाली चीज बहुत सरल है और मान्यता में ही कहीं ऐसी मान्यता है उनकी पड़ी को अंदर है। तो ऐसा बोला है कि अनंत संसार का कारण तो विचार करते हैं, राम को अनंत संसार का कारण है, अनंत संसार का दर्द तो मिथ्या को में पड़ा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने तो 43 साल तक मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाए, ये उपदेश दिया है। और वो उसकी प्रक्रिया, उसकी विधि, उसका निरूपण वो किस तरीके से है, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट करके बहुत से प्रवचनों में बताया। तो अपन जो ये चर्चा कर रही थी यहाँ पे जो ज्ञान देने की भूमिका बनी चलता, उसी में से ये प्रकरण निकलता है पूरा। सबसे पहले एक तो उसका निर्णय ऐसा होना चाहिए कि मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है और मेरे में जो कुछ हो रहा है वो ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान के अलावा जो कुछ भी होता है होता है वो है, ऐसा नहीं है, इसका कोई निषेध नहीं है, उसका अस्तित्व उसमें है। जैसे अभी आया कलश में कि राग द्वेष की उत्पत्ति उसका द्वंद्व कैसे प्रकट होता है, राग द्वेष का द्वंद्व। तो जब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं होता तब तक राग द्वेष का द्वंद्व उदित होता रहता है। और राग द्वेष का द्वंद्व जो होता रहता है और उसको ही भी मानना रहता है तो उसी का नाम तो विचार पर है। राग द्वेष से विचार तो नहीं होता, राग द्वेष को अपना मानना वो विचार पर है, राग द्वेष को अपना मानना और ज्ञायक को अपना न मानना उसका नाम विचार पर है। राग द्वेष तो ज्ञानी को भी होते हैं, स्वामी को नहीं है, एकत्व नहीं है, ममत्व टूट गया है, कर्तृत्व नहीं चलता है, भोक्तृत्व नहीं चलता है, उसका कारण को भी नहीं है उसको, उसका ज्ञातृत्व भी नहीं चलता है, उसका सब अंदर में ही उसको चलता है। तो इस तरीके की सोच अगर जीव की चलती है तो बहुत सरल है, मां अत्यंत सरल है। वो एक तो त्रिकाल द्रव्य है और एक ज्ञान का उपयोग है, यहां ही आत्मा है, उसके बाद नहीं आत्मा नहीं है। पहले तो कहीं तो ये बात है, इतने में ही है आत्मा, उसको कैसे देखता है, उसको कैसे जानता है, उसका निर्णय कैसे करता है, और वो निर्णय की प्रक्रिया भी जब बचती है वो उपयोग रूप ज्ञान में चलता होता, सब प्रक्रिया परिणमन की ज्ञान है, उससे सब प्रक्रिया होती है, जिससे श्रवण होता है, फिर विचार दशा बदलती है, फिर विचार दशा में चिंतन का स्वरूप चलता रहता है उसका, उसके बाद में उसकी ऐसी कोई धारा चले तो उसमें उसको निर्णय की एक भूमिका भी आ जाती है, और निर्णय के बाद में वो निर्णय में यथार्थता आती है, जो मैंने निर्णय किया है वो निर्णय यथार्थ है, और वो निर्णय के यथार्थ निर्णय के बाद में वो इसकी प्रयोग का होता है प्रयोग, और प्रयोग के बाद में उसकी परिणमन की स्थिति आ जाती है। तो ये सब स्टेप है, ऐसे ही चलना चाहिए गुरु को। अभी श्रवण करे और विचार उठाए नहीं चले, जैसे खेते गंगा राखा गंगा सुने, फिर उसका कोई विचार ही नहीं चले कि सवेरे प्रवचन में कहा क्या आया था, अभी शाम से लक्ष्य क्या बात आई थी, विज्ञान का उपयोग की क्या बात आई थी, अभी 320 बार 20 ज्यादा में क्या बात आई मन है,
ये विचार दशा चलनी चाहिए मुझे। गुरुदेव जी का एक प्रवचन सुने नहीं, एक प्रवचन एक गंदा है, चार पांच गंदा विचार करे तब तो थोड़ा कम जाएगा, इतने विचार आते हैं गंदे। तो एक तो ये त्रिकाली द्रव्य है वो अनुगुणात्मक अर्थन की प्रवेश है, त्रिकाल उसका काल और वस्तु निर्विकल्प मात्र, द्रव्य माने उसका निर्विकल्प, क्षेत्र माने उसका असंख्य प्रवेश, काल माने उसका अनादि निर्वाह और भाव माने उसका अनंत गुण। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड एक चैतन्य ध्रुव नायक तत्व है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है, उसको बोलते हैं ध्येय भूत अभेद। वो ध्येय बोला जाता है, ध्येय निकाली मुझे होता है, साध्य मोक्ष हो रहा है, साधक की दशा में बाधक बना ही बनता रहता है। तो ऐसी ध्येय की स्थिति है। अभी जो ये द्रव्य काल भाव में काल की चर्चा में वर्तमान पर ये लेते हैं और इससे त्रिकाल कहा है, तो वो ये 252 कलम की बात कर रही है, उसमें त्रिकाल काल है उसका अनादि अनंत, उसका भाव अनंत गुण है, उसका प्रवेश असंख्य प्रवेश ही है और द्रव्य है वो निर्विकल वस्तु है, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित अपनी सत्ता है, उसको ध्रुव सत्ता बोली जाती है, एक रूप सत्ता विनायक भाव परिपूर्ण चेतन परमात्मा, भूतार स्वभाव है, उपाधि भूत तत्व है, अखंड और निर्वीर तत्व है, ऐसी कोई मेरी सत्ता है, ऐसा मेरा ध्रुव परमात्मा है, वो अनादिरण परमात्मा ऐसा कैसा रहता है, वो संपूर्ण है विनायक भाव, ऐसी कोई ध्रुव सत्ता है। अभी ये ध्रुव सत्ता तो सबके पास है, निगोल में भी है, मोक्ष में भी है, अभय के पास भी है, तो उसका अस्तित्व तो है, मात्र उसका अस्तित्व से कोई फायदा नहीं है, उसका अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए, उसका अस्तित्व पहचान के उसका अनुभव होना चाहिए, उसका वेदन आना चाहिए, परिणामी बन के परिणाम परिणामी बन के अपरिणामी हो जाए तब तो उसकी वेदन की स्थिति खड़ी होती है। और प्रक्रिया जब चलती है वो सब ज्ञान में रहती है, सब ज्ञान में रहता है, ज्ञान उपयोग लगता हमारा ज्ञान है, जिसे सपा चित्र के दूसरे अध्याय में आया है उपयोग लक्षण, तो वो उपयोग लक्षण सभी को प्रगत है, प्रत्येक समय में उपयोग लक्षण प्रगत है, और वो उपयोग लक्षण है वो उपयोग लक्षण त्रिकाली ध्रुव का होने से वो अनन्य रहता है, उसके साथ अनन्य कला उसका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही उत्पाद भी होता है और वो उत्पाद अनन्य रूप से ही रहता है और वही उत्पाद में पूरा होता है, वही उत्पाद में निर्णय आता है, वही उत्पाद में विचार करता है, वही उत्पाद जो है वो स्वसंवेदन करता है, निर्णय भी उससे होता है। ये जो उपयोग का काम है वो उपयोग कैसा है कि वो उपयोग है वो स्पष्टता से भरपूर है, उसे प्रति समय वो स्पष्ट है, उसे मैं शांताबेन की बात उसमें लूंगा, उनको जब समीर दर्शन हुआ था तो वो कैसे हुआ वो भी इसमें बात आएगी, बहुत अच्छी बात है वो भी, उनको निर्णय हुआ था फिर निर्णय कितने दिन चला फिर वो कार्यों का निर्देशन कैसे आएगा, ये रमादेव को तो सब पता होगा, इस सवाल किसी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसा एक जो उपयोग है और एक ऐसा ज्ञान भाव है, तो वो ज्ञान लक्षण वाला उपयोग है और ज्ञान है वो लक्षण है, वो लक्ष लक्षण लक्ष लक्षण लक्ष लक्षण, अभी वो लक्षण है वो अनन्य है, अभी वो लक्षण को भेद करके अपने को समझना है, वो समझते 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 वो अवैध है ऐसा अवैध है ऐसा मालूम पड़ जाता है, अवैध है ऐसा मालूम पड़ता है, उसी समय प्रकृति वहां अपना अपन को कर लेती है, प्रकृति वहां अपनी स्थापना कर लेती है, प्रकृति में ऐसा स्थापना हो जाती है, तो ये ज्ञान में जब प्रक्रिया चलती है, इसका ज्ञान का उपयोग जो प्रति समय बढ़ रहा है वो स्वच्छ उपयोग है, और वो स्वच्छ उपयोग है उसमें सभी संयोगी भाव, सभी मोरा देश वाले भाव सभी झलकते ही है, झलकते ही है। वो झलकता है फिर भी उपयोग उपयोग नहीं रहेगा, उपयोग अपना उपयोग अपना छोड़ता नहीं, उपयोग अपनी पत्ता छोड़ता नहीं, वो उपयोग में अनन्य बड़ा चल रहा है, उससे बाल गोपाल सबको अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में वर्तमान में आ रहा है सबको, कोई भी बाकी नहीं है सचमुच उससे, ऐसा स्वरूप ही है, ऐसा स्वभाव ही है, वो उपयोग में उपयोग ही बचता है ना भी है, वो ज्ञान पूजा में लायक ही है, सब झलकन होती है होती रहती है उसके ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता स्वच्छता से कवर ज्ञान है प्रति समय प्रति समय। अभी वो ज्ञान में ऐसा प्रतिपादन होता है, ऐसी स्वच्छता बचती हुई है, तो आचार्य भगवान ने लिखा कि प्रथम ने प्रथम तू आत्मा को जान, प्रथम ने प्रथम तेरा कर्तव्य क्या है कि तू प्रथम ने प्रथम तेरे आत्मा को जान, दूसरा कुछ भी मत को पहले में पहले तेरा कर्तव्य है कि तू प्रथम ने प्रथम आत्मा को जान, पहले तेरी तेरी भूमिका है आत्मा को जान पहले। तो ये गुरुदेव जी ने 17 आंगना गंगा चलाई थी, अभी कल आंगना प्रकरण बेलो ने चलाई 17 आंगना सब प्रतिष्ठा हुई, तो प्रतिष्ठा में गाना कही तो 3 दिन तक गुरुदेव जी ने यही बात प्रथम आत्मा होगा प्रथम आत्मा होगा प्रथम आत्मा होगा। तो ये बोला कि ये साल हम तो थोड़ा आगे बढ़ो, 3 दिन तो हो गए, तो पूज्य गुरुदेव जी ने बोला कि ये बात होती है कि इतना ही काम करना है जिसको कि प्रथम ने प्रथम आत्मा को जान लेना, फिर उसने बोला कि पहले निश्चय प्रमाण जानना निश्चय जानना उपादान नहीं जानना, तो क्या वो सब आत्मा को जानने से आ जाता है, सब आ जाता है, आ जाता है, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं सब आ जाता है, सब आ जाता है, सब आ जाता है, जिसको रुचि लगती है आत्मा को जानने की उसको सब आ जाता है, उसको कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं रहती है। ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ये सब विद्यादर्शी का मेला है इसकी मान्यता देती होगी, इस तरीके से कभी सोचते ही कभी नहीं सोचते, उसकी पात्रता देखते एकदम पात्रता देखते हैं, पात्र ही शून्य आता है ज्ञान के बाद। तो गुरुदेव को गलत समझा नैरोगी ने कि भाई ये आप प्रथम आत्मा को जान और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा हो, लेकिन बात करते हो तो तैयार पूछने की बात है कि जिसको सब मालूम है उसके लिए ये बात है, तो पूज्य गुरुदेव जी का उत्तर था वहां पे तो नायरो जी ने तो उस समय किसी को कुछ पता भी नहीं था कि आत्मा कैसा होता है, कोई विवेक भी नहीं था लोगों को, उस टाइम मुझे गुरुदेव श्री ने वहां जाके कौन सी गाथा है आपको मालूम है, छठी गाथा, ग्यारहवीं गाथा, 14 गाथा, 15 गाथा, 17-18 गाथा, 21 गाथा, 38 गाथा, पूरी सब गाथाएं जीवन का थी और पूरी दृष्टि के लिए थी और ज्ञान का यथार्थ विधि जिसमें आती है 15 जाता हो तो 21 जाता वो गाथा है किसी गुरुदेव की नहीं बनी। तो गुरुदेव का जवाब देखा वहां किससे पूछा है कि भाई ये तो आप कैलाश पूजे की बात करते हो, तो पूज्य गुरुदेव जी का ये जवाब था कि ये पात्र पूछे की बात है, ये वर्ष टू वर्ष में बोल रहा हूँ आप सुन ले, गुरुदेव ने बोला तो ये पात्र पूछे की बात है, हमने ऐसी पात्रता देखी है ऐसी योग्यता हमको देखी है कि ये सुन के अभी उसकी पात्रता बाहर आ गया है, इसी योग्यता हमें देती है और इसी ही बात की हम गला है,
ऐसा हम नहीं है। तो सब कुछ कहने में कहने कर्तव्य यही है कि आत्मा में अंदर क्या भरा है ये भी समझने लायक है कि आत्मा कैसा है, आत्मा किस तरीके से रहता है, जैसे उसका अनंत प्रदेश है, जैसा उसका गुणात्मक अनंत भाव है, जैसा उसकी अनादि अनंत उसका काम है, चिंता है, यदि वो वस्तु निरंतर मात्र सत्ता है, यदि उसकी अमर्यादिता है अंदर में, यदि विकारता है अंदर में, जैसा उसका स्वरूप चैतन्यमय है, प्रदेश प्रदेश में चैतन्यता बनती है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण विद्यमान है, एक प्रदेश अनंत गुण दूसरे प्रदेश अनंत गुण, एक एक प्रदेश में अनंत गुण विद्यमान है, यदि मेरी जागरूक मान सत्ता है, यदि मेरी भूल सत्ता है, ऐसा मेरा चैतन्य बना है, ऐसा मेरा स्वभाव है, उसी को आत्मा बोलते हैं। सबसे पहले से पहले तो निर्णय ये आ रहा है, प्रथम से प्रथम निर्णय आत्मा का निर्णय करना है, वो निर्णय होता है अपना ज्ञान का उपयोग है, वो निर्णय स्पष्टता है, वो स्पष्टता प्रथम से ही है, अभी भी है, अनंत काल तक रहने वाली है, और बाकी की जो भी वस्तु है वो मात्र प्रतिभा होती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है आत्मा को और आत्मा को ज्ञान को। तो ये जो ज्ञान है उसमें ऐसी कोई निर्णय की भूमिका होती है कि आत्मा कैसा है, आत्मा कैसे प्राप्त हो और आत्मा कैसा है। सबसे पहले में पहले आत्मा ऐसा है, ऐसा निर्णय जीव को आता है कि मैं त्रिवाल द्रव्य हूँ, मैं शाश्वत द्रव्य हूँ, मेरे में पर्याय मात्र का सर्वथा अभाव है, मेरे में पर्याय मात्र का सर्वथा अभाव है, ऐसा मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य अपरिणामी तत्व हूँ, ऐसा निर्णय आता है। वो निर्णय किसका आता है, वो पर्याय है, वो पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मैं चैतन्य परिपूर्ण आत्मा हूँ, कि जिसमें पर्याय का सद्भाव ही नहीं है, ऐसी मेरी दृष्टि का विषय त्रिकाल द्रव्य है, ऐसा शाश्वत परमात्मा है, इसमें कोई उत्पाद मूल ही नहीं है, इसमें कोई परिणाम ही नहीं है, इसमें कोई क्रिया ही नहीं है, जो क्रिया जो परिणाम जो पर्याय जो उत्पाद चलता है वहां में हुई नहीं, उसमें हुई नहीं, वो मेरे में हुई नहीं, ऐसा सबसे पहले में पहले पर्याय की उपेक्षा करनी चाहिए, द्वेष भी होता है पर्याय का, पर्याय की उपेक्षा होती है, पर्याय की उपेक्षा होती है तब ही वो पर्याय द्रव्य को ध्यान में लगती है, जब तक पर्याय के पीछे पड़ता है, पर्याय ये समझना, पर्याय ये जानना, पर्याय को ऐसे करना, पर्याय को ऐसे खिलाना, पर्याय को ऐसे द्रव्य की तरफ ले जाना, तो वो पर्याय दृष्टि है उसकी, क्योंकि उसको वो खुद त्रिकाली द्रव्य है और उसको नहीं समझता है, और उसको पहले को ही समझने में उसका पूरा समय पूरा उपयोग उधर की चलता रहता है, ये पहले कैसी हो गई, ये पहले ऐसी हो गई, ये पहले कब जीतेगी, ये पहले कैसे अंदर जाएगी, तो उसको निर्णय में पहले की संपत्ता का एकदम अस्वीकार है, और स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता संपत्ता, कोई भी पर्याय आए वो पर्याय संबंध है, वो स्वीकार भी नहीं आता उसको, तो पर्याय स्वीकार है कि ही प्रवृत्ति चलती है, ऐसी पर्याय हो गई, ऐसी पर्याय हो गई, ऐसी पर्याय हो गई, ऐसी पर्याय हो गई, तो वो सब ज्ञान जानता है, ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानना 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 वही है, और वो ज्ञान जैसे बिल्कुल अभेद त्रिकाली आत्मा है, जैसे वो ज्ञान का उपयोग है वो बिल्कुल अभेद है आत्मा, आत्मा को अनन्य ही रहता है वो उपयोग, वो उपयोग में निर्णय की भूमिका आती है कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं चैतन्य परमात्मा कैसा हूँ, मैं निर्णायक भाव कैसा हूँ, मेरे अंदर में कैसा स्वरूप चल रहा है, वो सब वो ज्ञान निर्णय करता है। तो निर्णय करने के लिए ज्ञान को पहले में पहले चैतन्य की अस्तित्व की सत्ता का स्वीकार करके उसमें क्या क्या है और उसमें मोहरा द्वेष नहीं है वो पहले में पहले निर्णय उसको देना पड़ेगा, बाद में उसकी जो सत्ता है उसकी ज्ञान सत्ता है उसमें निर्णय होगा। तो ज्ञान या ज्ञान है वो सब गुणों में
सदा हृदय रहना। बाकी के जितने गुण है, जितनी उसकी क्रियाएं हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि उससे चेतना ही नहीं है। चेतना, ज्ञान चेतना, जानने की चेतना, वो मात्र ज्ञान है। तो ज्ञान ही मुख्य गुण है, ज्ञान से ही उसकी सत्ता का निकल होता है, ज्ञान ही मूल है। जैसे ज्ञान चलता है ना, उसके पीछे पीछे सब गुण चलते हैं। जैसे ज्ञान चलता है, सब पर्याय उसके पीछे चलते हैं। जैसे ज्ञान है श्रद्धा, लक्षण में जो श्रद्धा होता है ना, तो वो आगे होता है, उसके पीछे पूरा लक्ष्य होता है। वो राइट में मुड़ता है तो पूरा लक्ष्य राइट में मिल जाता है, वो लेफ्ट में मुड़ता है तो पूरा लक्ष्य लेफ्ट में मिल जाता है। ऐसे ज्ञान की कीमत ज्ञान श्रद्धा है। सभी पर्यायों का निर्णयात्मक भूमिका सभी पर्यायों में जो ही होने वाला है, जो होता है वो ज्ञान ही जानता है। बाकी कोई उनकी कोई पर्याय को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं। इसलिए ज्ञान जीव का जीवत्व का निश्चय कराता है, जीव का जीवत्व कैसा है वो बताता रहता है। और ज्ञान की स्वच्छता है, उसमें जितनी पर्यायों की प्रक्रिया चल रही है, जितनी पर्याय प्रत्येक समय में एक गुण की एक पर्याय को प्रगत रूप है, तो सभी पर्यायों की प्रगतता की जो प्रक्रिया चल रही है वो पूरी ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिभाती होती है। प्रति समय योग का प्रवचन है गुरुदेव का, उसमें ये सब बात नहीं है, उसमें भी आदमी है समय का प्राकार है। तो वो सभी पर्यायों की प्रतिभाषण बना ज्ञान से होता है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय ज्ञान की स्वच्छता ऐसे ऐसे रहती है। और पर्याय में प्रतिभाषण ज्ञान की स्वच्छता में, जैसे निज्ञान को हुआ तो भी प्रतिभाषण होता है, जैसे समझ लो कि राग हुआ वो भी प्रतिभाषण होता रहता है, जो भी होता है उसका प्रतिभाषण ज्ञान में हो रहा है। और ज्ञान उसी समय उसका भेदना करता है कि नहीं करता है, और जब उसका लक्ष्य उसी को जानने से हो जाता है कि स्व को जानने में आ रहा है, उधर लग चलता है वहां के टर्निंग पॉइंट आ रहा है पूरा। तो वो ज्ञान में क्या होता है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो एक अपेक्षा से वो परोक्ष में भी ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ऐसा एक उसका विश्वास करने लगता है, एक उसका अभिप्राय बन जाता है। वो अभिप्राय बनता है ना, वो अभिप्राय ज्ञान में बनता है, उस समय में उसका एक स्मरण होता है। स्मरण वो स्मरण में वो ज्ञान का एक भांडा है, वो अंदर की तरफ चलने लगता है, अंदर उसमें वो ज्ञायक का ही स्मरण निरंतर चलने लगता है। उसको जैसे उसको पता चल गया कि मेरा ज्ञायक ऐसा है, मेरा गुरु परमात्मा ऐसा है, मेरा संसारी गुरु ऐसा है, तो वो ज्ञान में जैसे विधिकल दशा में से शुरू के ज्ञान संकल्प में आता है और उसको जो परिणति चलती रहती है प्रकृति, ऐसा प्रकृति नहीं है अज्ञानी को, मगर अज्ञानी को भी ऐसा कोई स्मरण भाव, एक स्मरण भाव अंदर में ज्ञान में चालू हो जाता है अंदर में कि मेरा ज्ञान अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, उधर भी चल रहा है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो अखंड परमात्मा हूँ, ऐसा उसका एक भाव वहाँ एक चालू हो जाता है। जिसको विचार करके निर्णय आ रहा है श्रीकाली देवी का, उसकी बात चल रही है, उसको अंदर में ऐसा एक भाव चालू हो जाता है। मन का संग छूटा नहीं है, नायक का संग हुआ नहीं है, मन से ज्ञान उन्मुख होने की तैयारी में है, नायक से सन्मुख होने की तैयारी में है, उसी समय में ये जीव को ऐसा एक ज्ञान का फाटा, ज्ञान का बल भाव अंदर में, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, नायक तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं त्रिकाल अभेद तत्व हूँ, मैं अखंड तत्व हूँ, मैं नित्य लीलावरण हूँ, मैं सकल लीलावरण हूँ, ऐसा ऐसा बोलने से नहीं, ऐसा भाव चलता है। भाव बोलते तो सब है, मुझे देखा कोई भाव चलने लगता है, पात्र जीव होता है, निर्णय वाला जीव होता है, जिसने गुरुदेव के माध्यम से सब विचार किया होता है, उसको एक ऐसा स्मरण चलता है। स्मरण गुरुदेव ने स्मरण सब कैसे किया, स्मरण चलता है, स्मरण अंदर में चलने लगता है ज्ञान में, ऐसा स्मरण चलता है, ऐसा स्मरण चलता है कि जैसे कि अभी मैं नायक को भेज जाऊंगा, ऐसा स्मरण चलता है। अभी ईश्वर चालू है, राजा जी भाव चालू है, अभी मन का संघ भी छूटा नहीं है, मन विश्राम नहीं हुआ है। वो आता है ना वस्तु विचार ज्ञावे मन पावे विश्राम, स्वागत के अनुभव का होना, मगर अभी तो उसका एक स्मरण तो चालू हुआ। उस स्मरण में क्या हो रहा है कि वो स्मरण चलता है, चलता है, चलता है, आगे चलने लगता है, और सब प्रक्रिया जो बाहर में है वो प्रतिभाषित होती रहती है उसकी स्पष्टता में। वो स्पष्टता में प्रतिभाषित होता है, वो ज्ञान स्मरण करने वाला ज्ञान है, वही ज्ञान में पर प्रकाशक जो बना है वहां पे सब उसका परिणाम जो बात का है वो प्रकाशित भी हो रहा है, और वही समय वो ज्ञान अपना स्मरण आगे बढ़ता 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 उसका चलता जाता है। वो आगे बढ़ते 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 उसकी एक जो अभिप्राय की स्थिति है, अभी जो निर्णय होता है ना निर्णय, तो निर्णय के टाइम में क्या हो जाता है कि ज्ञान एक परोक्ष अनुभूति रूप आगे स्मरण रूप चलने लगा। उसी समय श्रद्धा की स्थिति क्या होती है कि श्रद्धा तो उसी समय राग में हूँ ऐसा ही मानती है, क्योंकि श्रद्धा में कोई विभाग नहीं होता है। श्रद्धा या तो पर को सृजती है राग को, या तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा श्रद्धा करती है। तो विधि निषेध ज्ञान करता है, हे ज्ञान ज्ञान करता है, वो हे उपाधिपना ज्ञान करता है, निर्णय ज्ञान करता है, लीडर ज्ञान है, वो ज्ञान में ही सब कार्य होता है। श्रद्धा तो अभी अंधी है, श्रद्धा अंधी है। दृष्टांत तो आता है, दृष्टांत तो मैंने पहले भी दिया हुआ था इधर। वो एक लंगड़ा होता था और एक अंधा था। पूज्य राजेंद्र बाबू दृष्टांत देते रहे कि वो लंगड़ा था ना, वो चल नहीं सकता था, और अंधा था वो देख नहीं सकता था। तो वो अंधा ने बोला कि तुम मेरे इधर खबर ले देख जा, तुम मेरे को रास्ता दिखाना और मैं चलूंगा। तो अंधा है वो श्रद्धा है, श्रद्धा अंधी होती है, और जिसको देख लेंगे लंगड़ा है वो ज्ञान है, मगर ज्ञान देखता है, श्रद्धा देखती नहीं। श्रद्धा तो ज्ञान से पीछे पीछे चलती है। ज्ञान देखा मुझे करता है, सत्रह धारा का लिखा है कि जाने हुए का प्रसाद होता है। ज्ञान जिसको जानता है उसकी ही श्रद्धा प्रदा कर देती है। अभी ज्ञान चैतन्य तत्व को जानेगा, ज्ञान चैतन्य तत्व की तरफ जाएगा, ज्ञान उत्तर चलने लगेगा। जैसे उसको इधर दिखा दिया और वो रास्ता दिखाता है, और श्रद्धा वो रास्ते में चलते 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 आगे बढ़ जाती है। जब उसका गंतव्य स्थान आने लगता है, तो ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान को रास्ता पता, तो ज्ञान को तो पता चल गया कि अभी अपना आने का टाइम हो गया है, अभी अपना नायक अपने पास ही है, अभी आ जाएगा, ऐसा स्मरण तो उसको चालू हो गया है। उसी टाइम श्रद्धा क्या करती है कि श्रद्धा में तो अभी उसी टाइम भिज्ञा तो चालू है, मगर ऐसा ज्ञान में निर्णय की भूमिका और स्मरण जो करने लगता है कि मैं नायक चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं रूप तत्व हूँ, मैं अखंड तत्व हूँ, मैं अभेद रूप हूँ, मैं असंख्य प्रवेशी और अखंड हूँ, ऐसा जो उसका स्मरण चलता है, तो उसी समय श्रद्धा में मिथ्या को गलना शुरू होता है। मतलब मिथ्या को गलना शुरू होता है, वो ज्ञान ऐसा नहीं देखता है कि श्रद्धा में मिथ्या को गलना है, ज्ञान का जोर तो अंदर नायक की तरफ भी चलता है। ऐसे ही वो ज्ञान चलता है, अंदर वो अंदर जाने की तैयारी में है, उसका स्मरण ऐसा हो गया है कि एक चैतन्य तत्व में ऐसा ही स्मरण उसको करने लगता है। वो स्मरण के आगे बढ़ते 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 कोई ऐसा उसको स्वविकल्प व संवेदन भी आने लगता है। वो स्वविकल्प व संवेदन कैसा होता है कि अभी ये आपने आत्मा आ गया कि आने वाला है, आ गया कि आने वाला, ऐसा स्मरण में आगे बढ़ते बढ़ते चलता रहता है। जैसे मुझे देर की बोलती थी कि स्नान करने के टाइम में जब सभी पूरा साबुन ले लिया हो, अभी साबुन छूट जाए और आंख पे तो साबुन लगा और मिले नहीं, ऐसे वो साबुन को ढूंढते ऐसा टाइम आता, अभी हाथ में आया तो छूट गया, हाथ में आया तो छूट गया, ऐसा उसका स्मरण चलता है। मैं नहीं सको, मैं सांसद तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं नायक भाव हूँ, विकास भाव हूँ, चलता हूँ माने कि वहाँ उसकी सहारा भी ऐसी चलने लगी है, वो सहारा चलने लगी है, उसमें उसकी तरफ उसका प्रयाण चलता है ना, तो उसको उसका निर्णय में वो ही ज्ञान में रमता है, विनायक विनायक भी रमता रहता है, विनायक भाव भी रमता रहता है, क्योंकि वो जो अंश जो है वो अंश अंतिम जो नायक है उससे जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहने पर भी उसको अभी विश्वास नहीं आया है, वो श्रद्धा ही की बात करती है, मगर ये ज्ञान बड़ा रूप आगे बढ़ता 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 परोक्ष अनुभूति कर लेता है, सविकल्प समय जनाता है, जैसे चौपाल पर जाओ तो चौपाल पहुंचे नहीं हो तो नजदीक से हो तो धन हो आने लगती है, तो पता चल जाता है कि अभी ये चौपाल आने वाली है, ऐसा कोई भाव चलता है अंदर, ऐसा मैं परिपूर्ण नायक हूँ, ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा अखंड तत्व हूँ, ऐसा भाव चलते 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 उसकी ज्ञान की स्थिति जब अभेद होने की तैयारी होती है तभी वो ज्ञान में से श्रद्धा को विषय मिलता है कि मेरा विषय भी नहीं मिला, वो दोनों साथ में चलते थे ना, तो वो साथ में चलने के टाइम में जब उसका गंतव्य स्थान आता है तब वो ज्ञान है ना वो ऊपर से नीचे उतर रहा है, नीचे उतर के फिर वो बताता है कि ये अपना स्थान आ गया है, अभी अपना स्थान आ गया है, अभी तू तू या मेरे सामने बस चल, तू मोर्चा पार कर, जैसे श्रद्धा है ये श्रद्धेय हूँ त्रिकाल हूँ यदि मोर्चा लगाती है तो वही ज्ञान जो परोक्ष अनुभूति ने तब तक सौंपने लगने चलता था वही तक पर हो जाता है, इसी तरीके से अनुभूति की प्रक्रिया चलती है। अभी ये कांता देवी जो एक बात हुई है वो महत्वपूर्ण है, उसके से ज्यादा प्रिय हो जाए, कांता देवी को पूज्य बेसी को तो अनुभूति हो गई, कांता देवी को उसने प्रयोग बताया, ब्रह्मचारी होमा देवी को सब पता है, तो उसने प्रयोग बताया, पूज्य बेसी ने बोला फटिक मणि का दृष्टान दिया, स्फटिक मणि होता है ना वो स्फटिक मणि तो स्वच्छ होता है, उसकी स्वच्छता ही ऐसी होती है कि बाहर बड़ा झलकते ही रहते झलकते ही झलकते ही रहते, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे द्रव्य और गुण है वो तो परिपूर्ण होते हैं, द्रव्य तो सभी को पर्याय नहीं है, द्रव्य गुण तो जैसा है वैसा ही है, पर्याय का इतना स्वरूप की पता नहीं है कि उससे प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम दूसरा तो उसको मुझे देखने दृष्टान दिया कि स्फटिक मणि होता है स्फटिक मणि स्वच्छ होता है और उसके पास में आप लाल फूल रख दो तो लाल फूल की झाए पड़ती होगा स्फटिक में, तो वो स्फटिक कैसा दिखता है कि स्फटिक लाल रूप में लगता है, फूल का स्फटिक लाल रूप हुआ है, फटिक तो फटिक है वो स्वच्छता नहीं है, अभी वो फूल यहाँ रखा और यहाँ फटिक रखा तो पता नहीं चला फटिक लाल लगने लगता है, अभी वो फूल को हटा अब फूल को हटाओ अभी फटिक को एक अंगेला आ गया स्वच्छता वाला लगेगा विश्वस्ता वाला लगेगा फिर फूल रखो फिर अभी कैसा लगेगा पता चल गया कि ये तो स्वच्छ ही है, ने बताया उनको कि स्फटिक मणि लाल हुआ ही नहीं, स्फटिक मणि का द्रव्यभूत स्वच्छ है, तो वो कांता देवी को एकदम वो पता चल गया, उसी समय निर्णय कर लिया उसने, वो निर्णय किया उसने, वो निर्णय को उसने नाम दिया कारण सम्यक दर्शन, कारण सम्यक दर्शन अनुभूति के पहले 79 देव के पहले उसको ये कारण सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय उसको पता चल गया कि मेरा द्रव्य को बदले में कहीं लाभ हुई स्वच्छता में भरपूर है मेरा होगा उससे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा निर्णय हो गया उसको, वो निर्णय हुआ उसको उसने नाम दिया कारण सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का कारण भी गया अभी कारण नहीं गया मगर सम्यक दर्शन कैसे होगा उसका कारण उसको मिल गया और वो कारण मिला बाद में उसकी 79 दिन तक भूख लगी और फिर उसी पर विचार, उसी पर उसकी स्थिति, वहां इंद्रियों काम करो, वो कहीं जाएंगे नहीं, इसकी स्थिति हो जाएगी। इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय पर्याय स्वच्छता ही है, पर्याय ज्ञान की पर्याय की रात भविष्य नहीं हो सकता है, वो प्रथम ही रहता है, प्रथम से पृथक है, अति पृथक है, वो अनंत काल तक वो चला ही जाएगा, ताकि अनंत काल तक अपने में आने वाला ही नहीं कर दू। ऐसी सोच जब चलती है तब प्रयोग चलता है, ऐसा पहले तो निर्णय होता है, निर्णय वो निर्णय ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको निर्णय होता है उसको भी निर्णय का बल आके 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 अनुभूति का अवकाश हो जाता है। सोगानी जी को क्या हुआ, सोगानी जी को, सोगानी जी को यही हुआ, यही हुआ उसको, गुरुदेव बोला, गुरुदेव का प्रवचन सुना, बस गुरुदेव ने बोला ज्ञान दिन रात दिन महात्मी ही है, ज्यादा कोई बात नहीं है, ज्यादा कोई विवाह परिणाम नहीं हो गया है जीव का, परिणाम जो होता है ज्ञान का वो तो पत्ता में ही हो रहा है, अभी भी इसी वक्त सब समय वो सत्ता में ही है, ज्ञान ज्ञान में कुछ हुआ नहीं है, वो तो सत्ता का और ज्ञान का जानने का स्वभाव उसका ख्याल में नहीं आता है, वो समय ज्ञान का अज्ञान को हो जाता है, और जब वो ख्याल आ जाता है तो उसी समय ज्ञान का ज्ञान को हो जाता है, बहुत बहुत बात है, ज्यादा नहीं है इसकी कुछ, मगर जहां से बात कही जाती है उधर जाके सोचनी पड़ेगी, अपन बाहर से सोचते हैं, बाहर का विचार बहुत करते हैं, तो वो विचार तो ज्ञान में चल रहा है, जब तक विचार चल रहा है तब तक विकल्प है, जब तक जब विकल्प छूटता है तब वो ज्ञान होता है, तो वो विकल्प कैसे छूटे कि ज्ञान का स्वभाव नायक भाव उसका अनंत गुण और वो उसकी जो परिणाम रूप पर्याय है उसमें जानना और स्वच्छता ही है, और कुछ है ही नहीं है, ऐसा मेरा द्रव्यगुण पर्याय के कवर में है, बाकी सब भूल जाने जैसा है, बार बार याद करने जैसा नहीं है, ये रात ग्राम कब जाएगा, मिथ्या को कब जाएगा, अरे भाई तू ऐसा स्वभाव को जानेगा तो मिथ्या को खड़ा ही नहीं होगा, खड़ा ही नहीं होगा, अपनी दूर करने का प्रश्न ही कहाँ खड़ा होगा, इसे स्वभाव का चिंतन करे, स्वभाव का प्रयोग करे, स्वभाव का निर्णय हो जाए तो वो उसकी स्थिति उधर ही लगती रहती है, उधर ही लग जाती है, उधर से निकलती नहीं, उसका ध्यान बार 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 उधर ही जाता है, और प्रधान होकर परिणति में प्रकृति रूप परिणति हो ही जाती है, ऐसा गुरुदेव ने बहुत बहुत बार भी चर्चा नहीं है, उनके उनके प्रवचन में उनके सूक्ष्म प्रवचन माने की सूक्ष्म पुलिस मगर वो प्रवचन जो उनके ऐसा विषय आ रहा हो कि जिसमें ढेर ज्ञान भरा हो और जिसमें अपनी चर्चा स्वभाव की द्रव्य गुण पर्याय की इस तरीके से आई हो कि जैसे अनुभूति का मार्ग वहां खुलता हो। अभी क्या होता है जैसे ज्ञान और विनायक का ऐसा स्वभाव पता चलता है ना, तो वो क्या होता है कि विनायक के दरवाजे पे आ जाता है, वहां से वो दरवाजा खुलता है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान चैतन्य में जाने का वो द्वार है, वो द्वार चैतन्य में जाने का एक द्वार है, और वो द्वार में जब आदमी जीव चला जाता है तो वो सहज में वो द्वार खुल जाता है। इसलिए सोच करनी तो अपने स्वभाव की, विचार करना तो अपना स्वभाव का, निर्णय करना तो अपने स्वभाव का, चिंतन करना प्रयोग करना तो अपना स्वभाव देना है, वो ही सोच चलाना, ऐसी सोच अगर अपनी व्यवस्थित चलने लगेगी तो अनुभूति बिल्कुल नहीं है, अपने पास से ही ऐसी अनुभूति बात से खुल जाती है, अपने नायक ऐसी पर्याय ऐसी उम्मीद हो जाती है कि जिसमें अनुभूति होती है उधर ही है, नायक में ही ज्ञान पड़ा है, वो ज्ञान बार उत्पाद होकर आता है, वही में नायक में से परिणाम करता है, और श्रद्धा वहां बहुत साफ मार होती है। ऐसी कोई स्थिति है इस तरीके से जो चीज विचार करता है कि जो ज्ञान देने का प्रकरण इसमें चलता है उसमें जो बच्चों 15 बच्चों 16 का समय वो भावार्थ में स्वच्छता की ही बात आई है कि प्रतिभाषित होता है विनय का, विनय स्वयं झलकते है, मैं तो ज्ञान में स्वच्छता हूँ, तो वो ज्ञान में स्वच्छता बताना है, विवेक कैसे चलते हैं वो नहीं बताना उनको। ज्ञान की स्वच्छता किस करनी है, ज्ञायक भाव का पास ले जाना है, झूठ तत्व बताना है, ज्ञान तत्व बताना है, ज्ञान मेरे को कैसे जानता है, ज्ञान मेरे को जानता कैसे खोलता है, ज्ञान नायक को कैसे जानता है, ऐसा ज्ञान मेरे का प्रकरण नहीं बताना है वहाँ। वहाँ बताना है कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञान में जानना नायक का कैसे होता है, वो जानना अभी विद्यमान है तेरे पास, बस तू तेरी रुचि की आँख खोल दे, रुचि की आँख खुली हमारे रुचि उस तरफ काम करने लगी तो ज्ञान का उपयोग समझने चला जाएगा। ने लिखा है कि जीव उपयोग को फिराने का प्रयत्न करता है मगर रुचि नहीं लगेगा, पहले तो रुचि लगनी चाहिए लगे के परमात्मा रुचि नहीं है अगर देखने और मेरा उपयोग क्यों नहीं फिरता, मेरा उपयोग नहीं फिरेगा उपयोग सतत पर रुचि उसकी होनी चाहिए निरंतर धारावाही। शिविर में आ गए सब तो चैतन्य परमात्मा याद आ गए और घर चले जा रहे तो फिर तो रुचि जो है वो चलता है, तो ऐसा नहीं होता, उसको निर्णय नहीं है, उसको स्मरण में नहीं आया है ना, ये तो स्मरण में निरंतर रहता है, अनुभूति से पहले स्मरण में रहता है निरंतर, तब अनुभूति होती है, ऐसा स्मरण चलता है। स्मरण अलग बात है, परिणति अलग बात है, परिणति ज्ञानी को होती है, मरण अज्ञान को भी चलता है, तो ऐसी कोई स्थिति है इस तरीके से सोच अगर नीति चलती है तो अनुभूति होती होती और होती ही है। सभी जीव को इस तरीके से अपना आत्मा को सोचना चाहिए और ये प्रकरण जो यहाँ आया है ये अपना 366 से 367 उसमें भी पीछे ये बात जो आई है सम्यक दृष्टि वाली, तो सम्यक दृष्टि की चर्चा उसमें आई है कि सम्यक दृष्टि को राधा जी भाव की चर्चा उसमें है कि सम्यक दृष्टि को तो राग होता है मगर राग का स्वामित्व नहीं होता है, राग रूप वो नहीं रहता है, ऐसा आया है इसमें पीछे अपन ने पढ़ा था, 5-10 मिनट का कहानी है समझ लेते हैं। जो ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग कौन से कारण से उत्पन्न होता है, कोई भी कारण उत्पन्न होता नहीं है, ऐसा उत्तर नहीं है, कोई भी कारण से राग उत्पन्न होता नहीं है, तो फिर प्रश्न आया कि तो फिर राग की ठान कहाँ है, तो फिर लिखा है उत्तर कि राग द्वेष मोह जीव का ही अज्ञानमय परिणाम है, अर्थात जीव का अज्ञान राधा जी उपजने की ठान है, इसीलिए राजो विषयों में नहीं क्योंकि विषयों पर द्रव्य है और सम्यक दृष्टि में भी नहीं क्योंकि उसको अज्ञान का अभाव है, इसलिए राजो विषयों में नहीं होने से सम्यक दृष्टियों को भी नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को अभी सम्यक दृष्टि भी हो गया, अभी अपन ने उसकी नीति विधि देख ली, अभी सम्यक दर्शन होता है, बाद में उसको राग द्वेष मोह होता ही नहीं है ऐसा भी शास्त्र में आता है, वो दृष्टि अपेक्षा से उसको कोई नया बंध नहीं होता है, दृष्टि अपेक्षा से उस अपेक्षा से राग द्वेष मोह नहीं है, अस्थिरता जन्य राग द्वेष मोह उसको चलता है मगर अस्थिरता जन्य राग द्वेष चलता है मगर उसका स्वामी नहीं होता है, उसका स्वामी बना उसको कभी नहीं होता है, मगर वो भी क्या होता है कि ज्ञानी भी जब अपने सुदुपयोग चलने से ही सुदुपयोग में से क्यों हो जाता है तो वो क्यों बाहर आ जाता है, अभी श्रद्धा तो कभी हो गई थी बाहर क्यों आता है वो समय दृष्टि, क्या होता है कि उनकी पुरुषार्थ की उस समय में कितनी औसत है, ये एक बात है, तब समय की पर्याय की उतनी योग्यता है, दूसरी बात, तीसरी बात है अनंतानुबंधी दया है और प्रत्याख्यानावली प्रत्याख्यानावली और संतुलन का क्रोध मान माया लोग की चार टोकरी तीन सफाई वाली अभी खड़ी है, नहीं ये तीन बात है पुरुषार्थ की उत्तम है, सबसे पहले में पहली बात ये बात है, दूसरी बात है सब समय की पर्याय की उस समय की ऐसी योग्यता है और निमित रूप से ऐसे तीन सफाई का बदलाव होने से ज्ञानी अपने सदुपयोग में से छूट होके बाहर आ जाता है, तो उसको अस्थिरता जन्य राग जो चलता है
उसका परिणमन है, मगर वो उसका स्वामी होता नहीं है। अपना स्वामी बना अपने द्रव्य में से कभी वो छोड़ता ही नहीं है, इसलिए वो कभी राधा जी का स्वामी होता ही नहीं। क्योंकि गुरुदेव जी ने समय साथ की अर्पित कथा और गोवर्धन साथ की भाव रखा में ये बात नहीं है कि अभी जो समय दर्शन जो हुआ भले प्रयोग कम हो मगर वो अप्रति है। मुझे मुझे बोलते हैं कि हमारे यहाँ गिरने गिरने वाली बात है ही नहीं, एक बार समय दर्शन हुआ तो वो प्रयोग कम साई लेते ही जमने वाला है। और कुछ बहन जी ने बोला कि हमारा प्रयोग कम है वो तो साई को जोड़ता हुआ इतनी जोड़ी साई है, ऐसा होगा कि हमारा प्रयोगक्रम ऐसा है सर्वोत्तम समय दर्शन कि वो साई को जोड़ने वाला है, इसलिए वो जोड़ी साई बोला है। और कभी प्रयोगक्रम और साई को अपन को पता है, मगर पूज्य बहन जी ने ऐसा बताया कि गुरुदेव ने ऐसा बोला कि हमारा तो अप्रति होते हैं। और किसी गाथा का प्रकरण लेते और गौतम साहब की बाल गाथा का प्रकरण लेते, उसमें ये बात है आदम कौशल लेते और फिर से अंकुर नहीं फूटता है वो तो बात है उसमें, तो उसमें से गुरुदेव निकाला के लिए अप्रति होते हैं हमारा। और वो पूज्य बहन जी ने बोला कि हमारा तो जोड़ी साई है। तो ऐसे इस काल में जिसको ऐसी प्रकृति रूप वह समय में दू ज्योतिष साइज का मतलब ये है कि संयोगन सत्य दर्शन ऐसा है कि वो साइज को जोड़ने वाला है, अभी मिलने वाला नहीं है, ऐसा कि वो साइज लेते ही जमने वाला है, अभी वो गिरेगा नहीं। भले पंचम काल है जो भी है यहाँ माने की चीर्तन करके हाजिर नहीं है इसलिए साइज तो नहीं होता है, चतुर्थ काल में होता है यहाँ तो नहीं होता है, फिर भी हमारा संयोगन सत्य दर्शन ऐसा है कि वो साइज होते ही रहेगा, माने कि वो गिरने वाला नहीं है, ऐसा उसका कहने का अर्थ है। जोड़ी साई माने की साई को जोड़ता हुआ उसको सर्वोत्तम समय दर्शन बोला, ऐसा बताना चाहते हैं। ऐसे नहीं वो मुझे ज्ञानी है ना, ज्ञानी का एक एक वचन अनंत आगम बोला जाता है, ज्ञानी का वचन में क्या होता है कि ज्ञानी का एक एक शब्द होता है ना उसी को आगम बोला जाता है। वो व्यक्ति ने बोला तो वो परम सत्य है, उसमें कोई अपने को ऐसे संदा करनी नहीं देती है। और गुरुदेव ने भी उसका किया है कि जो भी साइज मुझे व्यक्ति के नाम में आया है तो वो यथार्थ बात है, उसने ऐसा कोई नहीं सोचना। और देखो साहब जिसको समय दर्शन हुआ है वहाँ तो वो साइज तो होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो भी श्रीमद रामचंद्र जी ने 15 भोग बताया है, ज्यादा से ज्यादा 15 भोग में हो जाएगा। और मेरे ख्याल से भगवत की आराधना में भी ये बात आई है कि 15 भोग होते हैं माने 7 स्वर्ग के और 8 मनुष्य के है, समय दर्शन के बाद में मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव को मोक्ष कराया है, ऐसा आया है। तो एक बार समय दर्शन हुआ तो फिर तो उसने घर ले लिया है, वो घर ले लिया क्योंकि बार बार तो वो घर ले जाने वाला ही है, वो छूटने वाला नहीं है। तो उसी को तो बोला जाता है कि वो जो भी खाई हो गया सर्वोत्तम से खाई बोलना है, एक बात है। बस इस तरह से इस तरह से अपने स्वरूप को समझ के सर्वभवी जी मार्ग में प्रयाण करें।